परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक दिन एक बार और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हमने यहूदा की पत्री पर अध्ययन किया और बुक ऑफ जूड सो प्रकाशित वाक्य से पहले रेवलेशन से पहले है, उस पर 25 पद हैं, एक अध्याय है, 25 पद हैं और हमने उन 25 पदों का विभाजन में हम गए थे। पहले संडे हमने विचार किया था कि परमेश्वर किस प्रकार से परमेश्वर का सेवक अपने वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करता है और कैसा यहूदा अपना परिचय कराता है। यहूदा अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का भाई कहने से लजाता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह समय पृथ्वी पर सेवा कर रहे थे तो उसके भाइयों ने उनका तिरस्कार किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद यहूदा याकूब ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद न केवल वे उसके शिष्य बने, अनुयायी बने, परंतु वो कलीसिया के एक अगुवे बने, एल्डर भी बने और उन्होंने प्रभु की सेवा करी। और तब उसके बाद अब देखते हैं कि इस प्रकार से यहूदा एक केवल इस एक पत्र को लिख रहा है। फिर हमने इस बात को देखा था प्रेरित तो 15 अध्याय में हम यहूदा को देखते हैं जो कलीसिया का अगुवा है और वहां पर ऐसी परिस्थिति हो रही है कि कलीसिया में झूठे शिक्षक खड़े हो रहे हैं और कलीसिया को भरमा रहे हैं, विश्वासी को भरमा रहे हैं और तब वो सावधान करता है। सो हमने इस बात को देखा था कि दूसरा पत्रस, सबसे पहले दिन हमने यहूदा पढ़ा था, पिछले इतवार को हमने दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय 1 से 22 पत्र को पढ़ा था जो इसी के समान है। पत्रस कहता है कि आने वाले दिनों में झूठे भविष्यता होंगे, यहूदा कहता है झूठे भविष्यता अभी हैं, उस समय है, वो उस बात को वर्णन करता है। तब उसके बाद वो प्रोत्साहित करता है कि किस प्रकार से हमें अपने विश्वास को थामे रहना है, उद्धार को थामे रहना है, उसके लिए हमें संघर्ष करना है। तो पहले इतवार को हमने इस बात पर विचार किया था और विस्तार के साथ देखा था। तब दूसरे इतवार को जो पिछला इतवार था, आगे बढ़ते हमने इस बात को देखा था जब हमारा उद्धार हो चुका है और हमने विश्वास को पा लिया है, हमें उसकी रक्षा करना है। क्यों रक्षा करना है? क्योंकि झूठे शिक्षक हमारे बीच में जो हैं वो हमारे विश्वास पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं और भरमाते हैं। और तब हमने उन झूठे शिक्षकों के कुछ अवगुणों को, उन बातों को देखा था जो पुराने नियम से कई लोगों का चित्रण इसमें था और हमने कई लोगों के बारे में, पुराने नियम के बारे में देखा था, जैसे मिस्र है, स्वर्गदूत जो जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया, सदोम अमोरा के बारे में देखा था, कैन के बारे में देखा था, विलाम के बारे में देखा था, कोरा के बारे में देखा था और इन सब के बारे में हमने विचार किया था। और हम 16 पद तक आ पहुंचे थे, आज हम 17 पद से, वर्सेस फ्रॉम 17 आगे हम जाएंगे, 17 पद से आगे जाएंगे और तब हम ये देखना चाहेंगे जो आज का मुख्य विषय है कि ना केवल हमारे अब परमेश्वर क्या सुझाव दे रहा है, हमें किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और उसके साथ साथ कुछ प्रतिज्ञाएं जो वो हमें दे रहा है। अभी हमने प्रेरित काम उसका 20 अध्याय और 20 अध्याय से के 20 पद से 25 पद से लेकर 38 पद तक पढ़ा और जो हमने स्थल वो पढ़ा है वो यहां पर हम उसकी पूर्ति देखते हैं किस प्रकार से। आइए 17 पद से पढ़ रहा हूं, यहूदा 1:17। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को अवश्य स्मरण रखो जिन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही से कह चुके। और कौन प्रेरित? हमने देखा था किस प्रकार से पौलुस प्रेरित उस समय आपने उस यात्रा में जब यरूशलेम में आगे जा रहा है किस प्रकार से वो कह रहा है। पौलुस यरूशलेम में आगे बढ़ते हुए 20 अध्याय के आगे आते हुए रोम में आता है और फिर उसके बाद कई लोग उसको देखने नहीं पाते हैं। तो वहां पर वो सावधान कर रहा है कलीसिया को कि देखो मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुम सावधान रहना, तुम्हारे बीच में झूठे शिक्षक हैं, उनसे तुम्हें कैसे बचना है। और उस समय प्रेरित ने उसको कहा था, उनको कलीसिया को चिताया था, उसी बात को यहां पर यहूदा कह रहा है। यहूदा कह रहा है स्मरण रखो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? वे तुमसे कहा करते थे अंत के दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति पूर्ण बुरी अभिलाषाओं के चलाए चलेंगे, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये संसारिक एवं आत्मरहित हैं।
सो झूठे शिक्षकों का काम क्या है? लोगों को उनके विश्वास से भटकाना, लोगों को कलीसिया से भटकाना। एक बात को ध्यान में रखिए, कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है और परमेश्वर जानता है जो उसके सुसमाचार पर आधारित है। उसका निर्माण प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जो कुछ भी पिछले वर्षों में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करा, मेरी पत्नी, हम लोगों को इस्तेमाल करा, हम घमंड नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमारे साथ लोगों को दिया, लेकिन हमने साथ मिलकर परमेश्वर की आत्मा की सहायता के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन सेवाओं को करते कलीसियाओं की स्थापना की। हमने नहीं की, हमें उपयोग किया। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, सेवा में जब हम रहते हैं, हमें अपने आप को हमेशा देना है। मुझे नहीं मालूम मैंने यहां कभी बोला या नहीं बोला, लेकिन मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपको एक यहां पर वो इलेक्ट्रिक वो रखा हुआ लगा हुआ है, और अगर भाई आशीष से कहा जाए, आशीष भाई वो स्विच गड़बड़ हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, आप उसको जरा ठीक करिए। वो क्या करेंगे? हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे और सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर लेकर वो उसको खोलेंगे। अब खोल कौन रहा है उसको? आशीष खोल रहा है, स्क्रू ड्राइवर खोल रहा है? स्क्रू ड्राइवर खोल रहा है, हैं? आशीष भाई खोल रहे हैं, ठीक है। अब समझिए इस बात को, कौन खोल रहा है? आशीष भाई के हाथ में है स्क्रू ड्राइवर और वो जैसे घुमा रहे हैं वैसे वो काम कर रहा है। परमेश्वर की सेवा का यही सिद्धांत है, हम परमेश्वर के हाथों में हैं, एक टूल्स हैं, एक औजार हैं, एक हथियार हैं, और वो हमें अपने हाथों में इस्तेमाल करता है। अगर स्क्रू ड्राइवर भितक जाए और गिर जाए, क्या वो खुलेगा? जब तक पूरी रीति से वो आशीष भाई के हाथ में पूरे नियंत्रण में नहीं रहेगा, वो काम नहीं करने पाएगा। और इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन में ये सचेत होना है, सावधान होना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए उपयोग हो, तो हमें पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। और कि उसकी शुरुआत जो है वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने द्वारा आरंभ होती है। हम अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में यहूदा ने पहली तीन पदों में कहा है, और उस उद्धार को प्राप्त करके अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं। इस पृथ्वी पर कलीसिया, कोई भी कलीसिया सिद्ध नहीं है। कलीसिया विश्वव्यापी कलीसिया है, स्थानीय कलीसिया है। स्थानीय कलीसिया में मिली जुली भीड़ रहती है। आराम से हम देखते हैं, मैं कलीसिया के बारे में प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन आराम से इस बात को देखते हैं। परंतु जब हम इस बात को देखते हैं, इस पृथ्वी में कहीं कोई भी कलीसिया में जाए, एक बार की बात है, एक व्यक्ति इस कलीसिया में गया, ये कलीसिया अच्छे नहीं है, उस कलीसिया में गया वो अच्छे नहीं है, वो कई ढूंढते ढांढते एक बार पादरी साहब के पास पहुंच गया कि पादरी साहब मैं आपकी कलीसिया का सदस्य बनना चाहता हूं। कहले क्यों, क्यों बनना चाहते हैं? आप तो उस कलीसिया में थे, पादरी साहब कलीसिया अच्छे नहीं है। आप उस कलीसिया में थे, पादरी साहब वो कलीसिया नहीं। मैंने आपकी कलीसिया का बिजनेस सुना है, आपकी कलीसिया बहुत अच्छी है। पादरी साहब ने कहा, नहीं माफ कीजिए, हम आपको अपनी कलीसिया का सदस्य नहीं बना सकते। क्यों? मैं तो आपकी कलीसिया सदस्य बनना चाहता हूं, तब क्यों नहीं बनाना चाहते? कि जिस दिन आप इस कलीसिया के सदस्य बन जाएंगे, ये कलीसिया भी खराब हो जाएगी। कलीसिया हमारे ऊपर है, हम किस प्रकार से कलीसिया को समझते हैं। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सावधान रहना चाहिए नंदी दिन में। ये झूठी शिक्षा जो हमारे दिमागों में बैठती कहीं ना कहीं रहकर, वो हमें भरमाती है, हमें बहकाती है, हमें परमेश्वर के लोगों से दूर करती है, परमेश्वर के वचन से दूर करती है, परमेश्वर की सन्नति से दूर करती है, परमेश्वर की कलीसिया से दूर करती है। और पौलुस इसीलिए 20वें अध्याय में इसीलिए अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए सावधान कह रहा है। वो कह रहा है, ये कलीसिया परमेश्वर पिता के पवित्र लहू से खरीदी गई है, बहुमूल्य है। मेरे प्रियो, एक मां जिसके पास संतान होती है, चाहे कितनी गाली हो संतान, चाहे उसके शरीर में टूटापन हो, चाहे कैसी हो, लेकिन उसके लिए वो प्रिय होती है, उसके लिए प्रिय होती है। परमेश्वर की दृष्टि में स्थानीय कलीसिया भी प्रिय है, यद्यपि उसमें पूरी परिपक्वता नहीं है। और इसलिए मुझे और आपको जब हम यहूदा की पत्री को देखते हैं, मैंने ज्यादा डिटेल में गया नहीं समय के कारण, लेकिन इसको समझना है कि उसकी चिंता उस कलीसिया के लिए है जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है, बनाया गया है। और पौलुस का भी था, और इसीलिए यहूदा इस बातों को लिख रहा है। और तब आगे चल के कहता है वो कि अंत दिनों में ऐसे होगा, तो मुझे और आपको सावधान होना है। पिछली बार मैंने बताया था कि जब मसूरी हम जाते हैं तो वहां से ए शब्द से तीन, ए लेटर से तीन शब्द लिखे रहते हैं। ए बड़ा लेटर लिखा हुआ है अलर्ट अवॉइड एक्सीडेंट। पूरे रास्ते आप देखते चले जाइए, बाएं हाथ पे पहाड़ों पर ये लिखा हुआ है या बोर्ड पे लिखा हुआ है अलर्ट अवॉइड एक्सीडेंट। और मसीह जीवन में ये तीन शब्द बहुत ही उपयोगी और बहुत ही हमें, मुझे और आपको चेतावनी देने वाले हैं, सावधान करने वाले हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। तब हम आगे बढ़ते हैं, तब वो कह रहा है पर हे प्रियो, पर हे प्रियो क्या है? वो कह रहा है ऐसे लोग आएंगे और ये करेंगे, परंतु हे प्रियो तुमको अब क्या करना है? सात बातें हैं जो 20 पद से लेकर 23 पद तक वो मुझे और आपको करने के लिए कह रहा है, और थोड़ा सा हम उस पर रुकते जाएंगे। पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में गट कर, पर हे प्रियो तुम, पहली बात अपने अति पवित्र विश्वास में गट कर। पहली बात जो विश्वास है ये पवित्र विश्वास है, हमने प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, उसने पवित्रता के साथ अपने जीवन को दिया है। वो इस संसार में मुझे और आपको न केवल बचाने के लिए आया है, लेकिन पवित्रता में लेकर आगे बढ़ाने के लिए आया है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसकी उपस्थिति में पवित्रता की बहुत जरूरत है। तो ये विश्वास जो हमने अपने सोच में, अपने विचार में, अपनी भावना में, अपनी इच्छा में, अपने आप नहीं, लेकिन अगर हमारा विश्वास किसी स्वार्थ में है, किसी लालच में है, किसी और चीज में है, और तब लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम वो विश्वास पवित्र विश्वास में हमने नहीं किया, हम एक स्वार्थ में होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास इसलिए किया है क्योंकि वो एकमात्र उद्धार करता है, क्योंकि उसी ने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, वही एकमात्र प्रभु है जो मुझे और आपको परमेश्वर के सामने अनंत राज में पहुंचा सकता है। अगर ये विश्वास है, ये विश्वास पवित्र विश्वास है, और उसमें हमें गठरा है, मतलब जुड़ना है, उसको थामना है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है, असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ, असंभव है। और उसके आगे लिखा है कि और विश्वास क्या है? विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों उसके 11 अध्याय उसके 1 और 6 पद में जिन वस्तुओं को हमने देखा नहीं है, हमने अभी उस अनंत स्वर को देखा नहीं है, हमने अभी, अगर हम रोमियो उसके 4 अध्याय में जाएं और वहां पर पढ़ें, तो वहां पर हम इब्राहिम के बारे में पाते हैं कि किस प्रकार से इब्राहिम कहता है जो बातें थी नहीं, उन बातों को उसने विश्वास के कारण ऐसा स्वीकार किया कि वो मानो है, मानो है। इसीलिए कहा गया वचन में कि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण, जो बात हमने देखी नहीं, लेकिन इस विश्वास में हमें घटना है। मेरे प्रियो बहुत सारे लोग आएंगे जो आपका विश्वास सबसे पहले उस त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा त्रिएकता से हटाकर बहकाना चाहेंगे, दूसरी बातों को ले जाना चाहेंगे। दूसरी बात उसमें ना केवल घटकर लेकिन पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, दूसरी बात तो कह रहा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना रूपी जीवन का स्रोत पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन में है। हम ऐसे स्थान में, ऐसे संसार में, ऐसी जगह रहते हैं जहां प्रतिदिन क्यों प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, पतरस यदि मैं तेरे पांव ना धूं तो मेरा तेरे से कोई वास्ता नहीं। पतरस तो बहुत घमंड के साथ कहता, प्रभु जी मैं तो नहा चुका हूं, मुझे पैर धोने की जरूरत नहीं है। उसने कहा अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो मेरे से कोई वास्ता नहीं। क्या कहना चाह रहा है पतरस, तू जब तक इस पृथ्वी पर रहेगा, जब तक कोई संसार में रहेगा, तू चलेगा, तेरे पांव धूल से गंदे होंगे और तुझे धोने की आवश्यकता पड़ेगी, और केवल मेरे अलावा और कोई उस पांव को नहीं धो सकेगा। और मेरे प्रियो, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि हमने उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, यदि हम उसके पीछे चल रहे हैं, लेकिन इस संसार में रहते हुए आज भी हमारे पांव गंदे होते हैं, हम नहीं चाहते। पौलुस कहता है मैं नहीं चाहता कि वो कार्य करूं जो 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 मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे हो जाता है, और जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं बनने पाता। ऐसे में करने वाला कौन है? वो पाप जो मुझ में बसा हुआ। हमने प्रभु को पा लिया, लेकिन स्टिल वी हैव रिमेनिंग सिन इन अवर लाइफ। अभी भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बचा हुआ पाप है जिससे हमें प्रतिदिन संघर्ष करना है, और प्रार्थना उसमें हमारी सहायता करती है, और प्रार्थना उसमें हमारी सहायता करती है। हम अपनी शक्ति से नहीं उन पर विजय प्राप्त कर सकते। हमें रोज प्रभु के सामने आंसू बहाने हैं, प्रभु मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं इस भाई से प्रेम नहीं कर सकता हूं, मैं इस बहन को क्षमा नहीं कर सकता हूं, मैं उसके साथ एक साथ नहीं रह सकता हूं, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरे हृदय को बदलिए, मेरे स्वभाव को बदलिए, मेरे मन को बदलिए, प्रभु मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। प्रार्थना वो पवित्र आत्मा का वो स्रोत है जो मुझे और आपको भरपूरी में ले आती है। प्रार्थना वो है जो मुझे और आपको विजय जीवन हेतु हथियार उत्पन्न देती है। मुझे और आपको प्रतिदिन एक विजय जीवन में आगे बढ़ना है, और प्रार्थना वो हथियार उपलब्ध कराती है। वो छुरी चाकू नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर आधारित उन चीजों को देती है जिससे हम शैतान का सामना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, शत्रु शैतान मेरा और आपका विरोधी है, और इसलिए क्यों, जब वो प्रभु यीशु मसीह को पराजित नहीं कर सका, सबसे पहले उसने आदम हवा को पराजित करने की कोशिश करी, परास्त किया, लेकिन परास्त करने बाद उसने सोचा मैं तो हमेशा हमेशा के लिए विजय हो गया, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको पछाड़ कर उसको नाश कर करके अपनी प्रजा को अपनी सृष्टि को फिर से विजय दिलाई, और प्रभु यीशु मसीह किसी भी रीति से उससे पराजित नहीं हुआ। लेकिन आज उसकी प्रजा है, वो उस प्रजा पर आज भी वो आक्रमण कर रहा है। मैं उसको तो नहीं परास्त कर पाया, लेकिन मैं उसकी प्रजा को उसकी सृष्टि को आज भी परास्त करूंगा। संघर्ष चलता रहेगा जब तक उसका हमेशा हमेशा के लिए संपूर्ण अंत ना हो जाएगा। हम अक्सर बोलते हैं, इस तरह से आपने सुना होगा कि वो एक वो नाग है जिसके सर को तो कुचल दिया गया है, लेकिन पूंछ अभी भी फड़फड़ा रही है, पूंछ अभी भी फड़फड़ा रही है, और उसी रीति कर रहा है, उसी रीति कर रहा है। प्रार्थना न केवल प्रार्थना, प्रार्थना घायल हृदय को के लिए एक मरहम है। प्रार्थना एक घायल हृदय के लिए मरहम है। जो चीज हम अपने आप प्रयास से हील नहीं कर सकते, चंगाई नहीं दे सकते, हमारे हृदय दुखी हैं, चोटिल हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं, मेरे प्रियो हम अपनी कोशिश से नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना में के द्वारा वो परमेश्वर वो सामर्थ्य देता है, वो मरहम देता है जिससे हमारे हृदय जो घायल है वे चंगे हो सकते हैं। और इसलिए मुझे और आपको हर क्षण प्रार्थना की आवश्यकता है, और वो कह रहा है विश्वास में करके पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस क्यों कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो? आप जानते हैं चित्त से नहमय किस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ओ, उसके सामने एक दुख है, पीड़ा है, एक चिंता है, सब कुछ है, शहर पना खराब है, वो राजा के सामने खड़ा हुआ और राजा से कहने से डर रहा है क्योंकि पता नहीं राजा उसको अनुमति देगा, लेकिन वो राजा से तो बात तो कर रहा है, लेकिन उसका हृदय कहां लगा हुआ है? ये उसकी प्रार्थना थी। हाकिम के सामने खड़ा होकर भी वो निरंतर आत्मा में प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा था, ओ परमेश्वर, मैं इस हाकिम से बात कर रहा हूं, इस राजा से बात कर रहा हूं, इसके मन को बदल दीजिए, इसके मन से व्यवहार कीजिए, ये मुझे अनुमति दे दे, ये मैं जा सकूं और वहां तेरी प्रजा की सहायता कर सकूं। परमेश्वर तुझसे बात कर, इनको ऐसा कर। और परमेश्वर ने सब कुछ अद्भुत होने दिया, क्योंकि वचन लिखता है वो हाकिमों के मनों को नालियों के नाई बांध देता है। मेरे प्रियो, और इसलिए मुझे और आपको हर पल प्रार्थना की आवश्यकता है। सो कह रहा है प्रार्थना करते हुए, दूसरी बात, तीसरी बात कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। तीसरी बात है परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना। पहले बात विश्वास में गट कर रहना, दूसरी बात प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना, तीसरी बात है परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। संघर्ष आएगा, कठिनाई आएंगी, विरोध आएगा, झूठे शिक्षक तुम्हें बहकाएंगे, परेशान करेंगे, हताश करेंगे, निराश करेंगे, आक्रमण करेंगे, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। मेरे प्रियो, क्या मतलब है? एक बच्चा जब उसको चोट लगती है, या वो किसी छोटे से पिल्ले को देख लेता है जिससे उसको डर लगता है, वो कहां भागता है? भाग कर वो अपनी मां के पास आता है। क्यों? उसकी मां का प्रेम, उसकी मां का उसके साथ संबंध उसको अपनी मां की ओर खींचता है। हम वो परमेश्वर के प्रेम में, ये बहुत बड़ी बात है, ना केवल हमें जब हम परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाते हैं, उसका प्रेम हमें बढ़ता रहता है। मेरे प्रियो, मैं अक्सर बात को कहता हूं, नीति वचन में एक पद लिखा है परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, लेकिन यह भी लिखा है नीति वचन में धर्मी झूठ से घृणा करता है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर परमेश्वर झूठ से घृणा करता है और धर्मी झूठ से घृणा करता है तो क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ इसका कि जब परमेश्वर झूठ से अगर घृणा करता है और अगर वो परमेश्वर मेरे अंदर आ गया है तो जो उसका वो गुण है वो मेरे अंदर भी आकर के बढ़ता और बढ़ता चला जाता है। अर्थात वो झूठ से घृणा का स्वभाव जो परमेश्वर का है वो मेरा भी स्वभाव बनता चला जाता है। परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। जब मैं परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाता हूं, उसमें बढ़ता चलाता हूं, तो वो प्रेम मेरे जीवन में दूसरों के लिए भी बनना होता है। तब मैं दूसरों से प्रेम करता हूं, तब मैं दूसरों के लिए खड़ा होता हूं, तब मैं दूसरों की चिंता करता हूं, तब मैं दूसरों की सहायता करता हूं, तब मैं दूसरों के लिए सोचता हूं। मनुष्य का जीवन तो स्वार्थी जीवन है, मनुष्य का जीवन तो स्वार्थी जीवन है, मैं भी उसमें आता हूं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है, परमेश्वर का प्रेम। और इसलिए अगर वो प्रार्थना करने की कह रहा है तो मुझे क्या प्रार्थना करने की जरूरत है? प्रभु जी मेरी सहायता कीजिए ताकि वो परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में और अधिक बढ़ सके। प्रभु मेरी सहायता करिए कि वह मेरा जीवन आपके प्रेम में पूरी रीति से घिर जाए, भर जाए। मैं अपने आप में प्रेम नहीं कसता। मैं याद करता हूं, शायद मैंने पहले भी बताया होगा, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं एक यह अनुग्रह के लिए। आज भी मेरा मित्रता, ये मेरे संबंध उन लोगों से जो 30 साल 40 साल से हम साथ रहे, आज भी मित्रता बनी है, फ्रेंडशिप बनी हुई है, ये प्रभु का अनुग्रह रहा है। बहुत सारी परिस्थितियां आई, फिर भी 75 में हम बेतल में रहा करते थे, चार भाई साथ में रहते थे और एक भाई और था, वो आज लखनऊ में है, उनकी वाइफ की पिछले दिनों में डेथ हो गई, और वो चर्च में आते थे और मैं उससे बहुत क्रोधित हो गया। मैंने कहा मैं इनसे बात नहीं करूंगा। और जब कुछ बातें हो गई, उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था, और जब मैं संडे को चर्च में बैठा हुआ था, प्रभु के सेवक ने प्रचार करना शुरू करा और उन्होंने प्रेम के बारे में प्रचार किया और जब मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहा था उस परमेश्वर के वचन ने मुझे काटना शुरू कर दिया, मेरे हृदय को काटना शुरू कर दिया। मैंने वहीं से बैठ करके प्रभु से क्षमा मांगी और एक हफ्ते तक मैं अपने लिए प्रार्थना करता रहा, प्रभु मेरे मन में उस भाई के लिए प्रेम उत्पन्न कर दीजिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने मदद करी, हमारी उसकी मित्रता आरंभ हुई, आज भी उसकी और हमारी मित्रता बनी हुई है। प्रार्थना हमारे के लिए अपने आप के लिए करना है और जब हम ये कहते हैं तो तब वो प्रार्थना सहायता करती है कि हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें। परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया, उस प्रेम के कारण मेरा उद्धार हुआ, उस प्रेम के कारण मेरा छुटकारा हुआ, उस प्रेम के कारण मुझे विश्वास मिला, उस प्रेम के कारण आज तक मैं आगे बढ़ सका, उस परमेश्वर के प्रेम के कारण मुझे आशा मिली, उस परमेश्वर के प्रेम के कारण मैं संसार में खड़ा हो पाया हूं, उस परमेश्वर के प्रेम के कारण ये कलीसिया मिली है, उसके लोग मिले हैं, उसकी सहायता मिली है, उसके प्रेम के कारण मैंने बहुतायत से बहुत कुछ को पाया है। हम उसकी उसका वर्णन नहीं कर सकते, अब वर्णन नहीं है, लेकिन वो प्रेम जो एक कीमती प्रेम है, जिसके लिए मूल चुकाया गया, जिसके लिए उसने अपने आप को उस प्रेम में होकर अपने आप को बलिदान कर दिया, उस प्रेम में मुझे अपने आप को डाल करके मुझे और आपको बनाए रखना है। परिस्थिति विभिन्न आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं, परीक्षाएं आ सकती हैं, दुख और बीमारियां आ सकती हैं, ये सब कुछ आ सकता है। कितने लोगों की कहानियों को हम सुनते हैं, कितने लोगों के जीवन की साक्षियों को हम सुनते हैं, कितने लोगों के बारे में हम बातचीत कर सुनते हैं कि किस प्रकार से परीक्षाओं में, समस्याओं में, सतावनी में, संघर्ष में गए हैं, लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। मेरे और आपके लिए भी चुनौती है मेरे प्रियो। आज मैं और आप यहां पर, मुझे नहीं मालूम आप में से बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसी जगह काम करते हैं कि बहुत कठिन उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा हम उस प्रेम में बनाए रखते हैं। ना केवल तीसरी चौथी बात, अपने प्रेम में बनाए रखो तब कह रहा अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह की बाट जोनी है, पर कैसे जोनी है? उत्सुकता से, उत्सुकता से, उत्सुकता से। कभी आप स्टेशन पे आप कभी गए हो और आपने देखा है स्टेशन पे एकदम से ट्रेन आने वाली है, लेकिन कुछ लोग भीड़ लगाए खड़े हुए हैं, माला लेके खड़े हैं, कौन आ रहा, कौन आ रहा, कौन आ रहा, नेताजी आ रहे, नेताजी आ रहे। तब आपकी उत्सुकता क्या होती है? आपकी उत्सुकता बढ़ जाती है। कल भाई लोग रात में क्रिकेट मैच देख रहे थे, मैं तो सो गया था, मुझे नहीं मालूम कौन कौन, लेकिन जब मैंने सुबह पेपर देखा तो मैंने पेपर देखा कि इंडिया एक रन से हार गई, तो उस समय पूछे उन लोगों से जो मैच देख रहे थे, वो आखिरी ओवर में क्या उनकी उत्सुकता थी, कितने देखे, कितने लोग हंसे, आखिरी ओवर में क्या उत्सुकता थी समय, लेकिन उत्सुकता क्या गई, ये संसारिक नहीं है भैया, ये उस प्रभु यीशु मसीह पर जो अनंत का परमेश्वर है, जिसकी वचन हां और आमीन के साथ है, जिसकी प्रतिज्ञाएं सदा आमीन के साथ है, अभी हम आगे चल के देखेंगे। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर वो कह रहा है उत्सुकता से हमारा मसीह जीवन जोश में होने वाला होना है। प्रभु को जब से प्राप्त करा है, जब से मैं कलीसिया में आने लगा हूं, जब से मैं कलीसिया में आने लगी हूं, क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई, मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया। कहां है उत्सुकता, कहां है वो जश्न? प्रभु में आए रोने के लिए आए हो भैया क्या? प्रभु ने रोने के लिए नहीं बुलाया। अगर आप प्रभु में आने के बाद रोते हैं तो उसमें प्रभु का काम आपके जीवन में सच्चा काम नहीं हुआ, सच्चा काम नहीं। आपको जांचना अपने आपको, हमारे अंदर वो जोश होना, संसार तो थोड़े दिन का है, 10 साल 20 साल 50 साल में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हमारी उत्सुकता अनंत काल के लिए, वो कैसे सुंदर वो स्थान होगा जहां ना कोई आंसू होंगे, ना कोई भूख होगी, ना कोई प्यास होगा, ना कोई रोना होगा, ना कोई होगा, हम उस अनंत परमेश्वर के साथ अनंत काल तक राज करेंगे और हम उसकी कितना उत्सुकता से बाढ़ जो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कह रहा बाढ़ जो उत्सुकता से। मेरे प्रियो, जब हम अपने दृष्टि को नीचे रखते हैं तो हम निराश होते हैं। जब हम अपने दृष्टि को प्रभु के सामने ऊंचा उठाते हैं तो हम आनंदित होते हैं। हमारी आशा उस पर होती है। सबके साथ होता, मेरे साथ भी होता है, मैं भी स्ट्रगल करता हूं। और पिछले दिनों में मैं कुछ बातों से बहुत निराश था, लेकिन बाद में परमेश्वर के वचन को मैंने पढ़ा, मेरे साथ ही कब भी जब ऐसा था, मैं अक्सर भजन संहिता खोलता हूं, उसको पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं और उनकी प्रतिज्ञाओं को क्लेम करता हूं। प्रभु मुझे आनंद देता है, मेरी आशा बढ़ाता है। हर मनुष्य के साथ हो सकता है, हम मनुष्य है, हम आपसे कोई बड़ा दुल्हा संत नहीं हूं, आप ही के समान हूं। जैसे आपकी जरूरत है, मुझे मेरी भी जरूरत है। प्रभु ने शिक्षा का काम दिया है, सेवा दी है, लेकिन हम सब एक हैं मेरे प्रियो। पर परमेश्वर मुझे और आपको उत्साहित रखना मांगता है। मसीह जीवन एक उत्साह के साथ आगे बढ़ने वाला जीवन है। अगर एक दौड़ने वाला पहले ही निराश हो जाए, पहले हो जाए, अरे कहां दौड़ पाएंगे, कहां उसे जीत पाएंगे, वो तो इतनी दूर है, तो क्या दौड़ लेगा वो? नहीं दौड़ेगा। हाँ, जोश होना चाहिए, लेकिन उसके साथ होश भी होना चाहिए। कई बार जोश के साथ बिना होश के हम चलते हैं तो गड़बड़ हो जाता है ना मेरे प्रियो। नियम के साथ तब आगे चल के कह रहा है, बाढ़ जोते रहो। चौथा में बाढ़ जोना है। तब जो संदेह करते हैं उन पर दया करो, जो संदेह करते हैं उन पर दया करो। ये पांचवी बात है। न केवल हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, लेकिन हमें दया भी दिखाना है। इसीलिए मैं हम पिछली बार जब आरंभ में थे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दया, शांति, प्रेम बहुतायत से दिया है। जब यहूदा लिख रहा है, ग्रीटिंग्स लिख रहा है, उसमें करता है, दया हमने पाई है, लेकिन उस दया को हमारे अंदर आना है ताकि हम दूसरे पर भी दया दिखा सके, दूसरे पर भी दया दिखा सके। और ये वो कह रहा है, जो कौन है जो संदेह में है, किस प्रकार का संदेह? शायद उन्होंने सुसमाचार को सुना है, लेकिन फिर भी सुसमाचार को सुनने बाद वो इधर भी उधर भी। दो देखिए, हमें लोगों को पहचानना सीखना है। कुछ लोग सच में नीडी होते हैं, उनके सामने सच्चाई के साथ संघर्ष होता है, हमें उनकी मदद करनी है। लेकिन कुछ लोग मूर्ख बनाते हैं, हमें उनको भी पहचानना है। और परमेश्वर परख का आत्मा देता है। मैं इसलिए अधिकतर लोगों से कहता हूं जो सेवा में है उनको परमेश्वर से प्रार्थना मांगनी चाहिए कि प्रभु हमें परख का आत्मा दे। आप अगर लोगों से बात करें, लोग बात करेंगे, भैया हाँ हमें परमेश्वर के गिफ्ट मांगनी, परमेश्वर का वरदान मांगना। कौन सी गिफ्ट मांगनी है? अन्य भाषा का मांगना है, चंगाई का मांगना है। कोई बुरा नहीं चंगाई का, इसलिए क्योंकि भैया चंगाई होगी तो थोड़ा नाम उनका भी होगा, थोड़ा मेरा नाम भी होगा, प्रभु का नाम भी होगा। किसने नहीं कहा, किसने चंगाई करी? फलाने ने करी है। ओ हमारा नहीं, गलत। लेकिन वो चीज जो हमें संघर्ष में करें, कितना हम विश्वास की वरदान मांग लेते हैं, कितना अधिक परख का वरदान मांग लेते हैं, कितना अधिक हम प्रेम का वरदान मांग लेते हैं, बहुत सारी सेवा का वरदान मांग लेते हैं, हमें मांगना। और यहां वो कह रहा है कि हमें परमेश्वर से संदेह जो करते हैं उन पर दया करो, शायद परमेश्वर के सुसमाचार पर, या किसी ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जो उनके साथ, चूंकि जब वो झूठे भविष्य आएंगे तो जब उनको बताएंगे तो वो इधर भी होंगे, उधर भी होंगे, इधर भी होंगे, उधर भी होंगे, क्या करेंगे? उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे उन पर उनके अंदर संघर्ष हो सकता है, बहुत सारे उन जलन होती है, बहुत सारे संदेह उत्पन्न होते हैं। उस समय एक सेवक होने के नाते क्या काम होगा? उस दया में धीरज भी चाहिए होता है। तब आगे चल के क्या कहता है वो? कहना ना केवल बाढ़ जोते रहो, दया करो, लेकिन औरों को आग में से झपट कर निकालो। आग में से झपट कर निकालना क्या मतलब? आग, मैं आपको एक लिविंग उदाहरण देना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने कई सारे अनुभव दिए हमें। फैजाबाद में जो चर्च आशुरा तो इंडिपेंडेंट हो गया, जायन हमारा वंकी में थे, जायन फैजाबाद में उस चर्च को हम लोगों ने शुरू करा। एक भाई था वहां पर, वो उसको हम लेकर आए अपने पास थे, और उसके घर में कुछ लोग जाकर, एक प्रभु के सेवक जाके विजिट कर ले तो छोड़ करके उड़ीसा चले गए। रात में 10 बजे उन्होंने मुझे फोन किया, और मैं उन दिनों यही पुस्तक पढ़ भी रहा था। उन्होंने रात में मुझे 10 बजे फोन किया, कह ले भाई रॉली उस सेवक ने, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। मैंने क्यों, क्या हो गया? कुछ परिस्थिति ऐसी थी, ऐसी परिस्थिति थी, वो वहां पर दुआ करने जाते थे, बाइबल समझाने जाते थे, कि तब उन्होंने सारी कहानी बताई मुझे, लंबी कहानी है। उन्होंने कुछ बातें ऐसी थी जो परिवार में थी, उस परिवार में भाई के पिताजी नहीं थे, केवल माता थी, बहन थी, एक भाई था, सो कुछ कुछ ऐसी परिस्थिति थी उसमें। तो मैंने उसको रात में जब 10 बजे उसने फोन किया मुझे, तब रात में मैंने उससे कहा, भाई यही बाइबल बताती है, आप ये कह रहे हैं लेकिन आग में झपट कर निकालना है, नहीं मैं वहां जाऊंगा तो मेरे नाम को ये होगा, मेरे को ऐसे को लोग मैसे कहेंगे। आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति कोई आग में से किसी को निकाल रहा है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसके हाथ ना जले, या वो झुलसे ना, या आंच ना लगे, कुछ नहीं, कम से कम उस आंच में से जब हाथ डालेगा, बाल तो जले ही जलेंगे जो हाथ में, शरीर में कुछ तो असर होगा, कुछ तो होगा। तो जब आग में से झपट कर आपको किसी को निकाल रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ, कुछ ना उस आग का असर भी आपके ऊपर आएगा, आएगा। और वो समय है जो हमें सहने के लिए तैयार होना है। प्रभु ने हमारी मदद करी। दूसरे तीसरे दिन मैं फैजाबाद गया कुछ भाइयों को लेकर, और धीरे 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 करके हमने जो कुछ हम करना था करा, टाइम लगा, लेकिन बाद में उसी घर में, जिस घर में भाई नहीं जाना चाहता था, उसी घर में परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना करी, कलीसिया की स्थापना करी, और आज वो भाई उन लोगों के साथ आज तक जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग प्रभु ने दिए। कई बार हमें कदम उठाने पड़ते हैं, कई बार हमें कदम उठाने पड़ते हैं, संभालना पड़ता है। हमारी सेवा में बहुत सारे ऐसे अनुभव आए हैं। अब वो बहन जिसकी अभी डेथ हो गई पिछले हफ्ते, उस बहन को संभालने के लिए हमारे परिवार में मेरे और मेरी पत्नी ने, पति को 8 महीने कोर्ट केस का सामना करना पड़ा, 8 महीने कोर्ट केस का सामना, कोर्ट में जाना पड़ा गवाही देने के लिए, मुझे दौड़ना पड़ा, करना पड़ा, है ना, कई सारी बातें हुई, बहुत कुछ हुआ। हमने उस आग में झपट कर लोगों को निकालने के अनुभव को देखा है जिसमें हमारे हाथ जले हैं, मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर खड़ा करता है, बताता है। जब हम इस बात को देखते हैं तो यहूदा मुझे और आपको चुनौती देता है, देखिए कहां से शुरू कर रहा है वो, उसके जो कदम है लिखने के, उसके जो चरण है लिखने के, क्या स्टेप्स, उन पर ध्यान दीजिए। वो आग में झपटने की बात पहले नहीं कह दे रहा है, पहले विश्वास में दृढ़ता की बात कर रहा है, फिर पवित्रता की बात कर रहा है, फिर प्रार्थना के जीवन की बात कर रहा है, फिर दया की बात कर रहा है, तब कह रहा है कि तुम आग में झपट कर निकालो। ये कदम ऐसे नहीं आ सकता, एकदम से हम आग में नहीं जब, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के सहायता के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा तैयार ना कर सके। और मेरे प्रियो, वो जवान बच्चे जो आने वाले दिनों में वचन की सेवा हेतु अपने जीवनों को तैयार कर रहे हैं, उनको सीखना है स्टेप्स बाइबल में। जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं और जब उन कहीं भी आप पढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखते हैं, कदम दिखाई देते हैं, आप उनको लिंक करेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा है और वो उस तरह से वचन को लिखवा रहा है कि इसके बाद कैसे कैसे आगे बढ़ना है। वो गड़बड़ का आत्मा नहीं है, गड़बड़ का आत्मा नहीं है, क्रम का आत्मा है। पहला क्रंथ 14 में यही लिखा है कि पवित्र आत्मा क्रम का आत्मा है, सारी बातें क्रम के साथ की जाए, और वो सिखाता भी वचन इसी तरह से, सिखाता भी इसी तरह से वचन है। तब आगे चल के क्या कह रहा है, ना कालो, और कह रहा है, तब वो कह रहा है, और डरते हुए अन्य लोगों पर दया करो, डरते हुए यहां तक कि शरीर के द्वारा कलंकित वस्त्रों से भी घृणा करो। डरते हुए हमें उनको निकालना है, उनको दया करनी है, आग से झपट कर निकालना है, लेकिन अपने आप को बचाए रखना है। कैसे बचाए रखना है, वो क्या कह रहा है, दया करो यहां तक कि शरीर के द्वारा कलंकित वस्त्रों से भी घृणा करो। यह मतलब है कि तुम्हारा जीवन किसी भी प्रकार से इन संसार के धोखे में आकर, ओ मैं सेवा कर रहा हूं, मैं इस पर दया कर रहा हूं, मैं इसको बचा रहा हूं, मैं झपट के निकाल रहा हूं, और तुम्हारे वस्त्र खुद गंदे हो रहे हैं। तुम्हारे वस्त्र पे, तुम्हारे जीवन पे, तुम्हारे कान में किसी प्रकार से कोई उंगली ना उठाने पाए, तुम्हारा आत्मिक जीवन किसी प्रकार से घृणित नहीं होने पाए, तुम्हारा जीवन किसी प्रकार से दोषी नहीं ठहरने पाए। वो बिचारी बहन जो है बहुत परेशान है, और प्रभु ने कहा उस पर दया करो, इसलिए मैं दया कर रहा हूं और मैं उसको रोज सुसमाचार सुना रहा हूं, रोज सुसमाचार। अरे भैया, तुम उस बहन को सुसमाचार सुना रहे हो, तुम रोज एक एक दो दो घंटे बैठकर उसके साथ अकेले बात करते हो, पड़ोसी क्या समझते हैं? क्या तुम्हारी साक्षी लोगों के सामने कैसे हो रही है? हमें ध्यान रखना, हमारी सेवाएं जो है या कुछ भी है, चाहे हमारी सहायता कुछ है, परमेश्वर का वचन हमें सावधान होना भी सिखाता है। आग बंद करके हमें सेवा नहीं करनी है, आग बंद करके हमें प्रेम नहीं दिखाना है, आग बंद करके हमें दया नहीं दिखानी है, लेकिन अपने जीवन को पवित्रता में बनाए रखना है, अपने जीवन को, अपने वस्त्रों को किसी प्रकार से कलंकित और घृणित नहीं होने देना, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली न उठाना। भाई यही तो पॉलुस ने तिमोथियुस को कहा था कि कोई तेरी जवानों तिमोथियुस, तू यंग पास्टर है, अभी कलीसिया का सेवक है, तुझे अपने सेवा करने पर तू सावधान रहे, तेरी जवानी पर कोई उंगली न उठाने पाए। हमारी सेवाएं परमेश्वर की महिमा के लिए होनी है, हमें अपने आप को बचा के रखना है और सावधान होकर आगे बढ़ना है। इसीलिए वो यहां पर कहता है, ठीक है तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, तुम्हें प्रेम परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करके प्रेम दर्शाना है, परमेश्वर की दया को प्राप्त करके दया को दिखाना है, लेकिन सावधान रहना है, अपने जीवन को पवित्र बनाकर इस प्रकार से रखना है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली ना उठाने पाए या तुम्हारे वस्त्र घृणित ना होने पाए, कलंकित ना होने पाए। और मेरे प्रियो, क्यों ये जो झूठे शिक्षक थे वो घर घर जाकर के वो लोगों को बहकाया करते थे, परिवारों को तोड़ा करते थे, पति पत्नी के संबंध को विच्छेद किया करते थे, बहुत सारे ऐसे इनके काम थे जो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। इसीलिए पौलुस को बार बार सेवकों को इस तरह के पदों को लिखना पड़ा, वचनों को लिखना पड़ा, और आज भी वो कई जगह पे इस तरह से हम देखते हैं। हमें सावधान रहना है। सो यहां पर वो कह रहा है कि यहां तक शरीर को कलंकित वस्त्रों से भी घृणा करो, अर्थात अपने आप को बचा रखो, अपने आप को सावधान रखो, ताकि तुम्हारी सेवा किसी प्रकार से घृणा न होने पाए। पहले दो पद में 17 पद से लेकर 19 पद तक वो सचेत करता है कि ऐसे लोग आएंगे जिनके बारे में पहले से कह चुका है, वो कह रहा प्रेरित कह चुके हैं, और इसलिए अब तुम्हें इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करना है। 20 पद से लेकर 23 पद तक, अब 24 और 25 पद में वो दो महत इनकरेजमेंट या प्रॉमिस देता है, बहुत सुंदर वो कहता है। वो ये क्या कहता है आगे चल कर, अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर की महिमा हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम एवं अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जैसा सनातन काल से अब भी हो और युगनक होती रहे। वो यहां पर किस प्रकार से वो कह रहा है कि परमेश्वर योग्य है, कह रहा परमेश्वर योग है, परमेश्वर योग है, वो शक्तिमान है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अनंत काल का परमेश्वर है, और वो तुम्हें ठोकर खाने से या धोखा खाने से बचा सकता है और बचाएगा। हमें इन संसार में, इन बदलती हुई परिस्थिति में, इन झूठी शिक्षकों के बीच में, इन सब कुछ के बीच में हमें परमेश्वर बचाने के लिए तैयार है, जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है। क्यों कह रहा है तुम्हारी ठोकर खाने से रक्षा कर सकता है, क्यों कह रहा है? दो बातें हैं, ठीक है वो इस योग्य है, सब कुछ करेगा, लेकिन कब हमारी रक्षा करेगा? अगर मैं ये सोचता हूं कि भाई फिलिप मेरी इस काम में सहायता कर सकते हैं, तो मैं भाई फिलिप के पास जाऊंगा। मेरा कदम, मेरी सोच मुझे भाई फिलिप तक पहुंचा सकती है। अगर मैं सोचता हूं कि भाई फिलिप नहीं कर सकते, तो मैं भाई फिलिप के पास नहीं जाऊंगा। अगर मेरे और आपके ध्यान में, मन, मस्तिष्क, विचार, भावना में पूरी रीति से दृढ़ता के साथ है कि परमेश्वर इस योग्य है, तो मैं परमेश्वर का सहारा लूंगा, नहीं तो मैं संसार का सहारा लूंगा। क्यों हम परमेश्वर छोड़कर आज संसार में चले आते हैं? क्यों हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कर सकता है, वो योग्य है, और हमें अपने जीवन में हर बात में उसको याद रखना है। मेरे प्रियो, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। घर में आपकी कोई भी परिस्थिति हो, बीमारी हो, घटना हो, दुर्घटना हो, घटी हो, कुछ भी हो, पहला कदम आप ये सीख लीजिए, आपको घुटने पे, जरूरी नहीं 5 घंटे व्यतीत करें, 5 मिनट अपने बोझ को प्रभु के सामने डाल देना है। तब उसके बाद प्रभु से पूछना है, मुझे डॉक्टर के किस डॉक्टर के पास जाना है? तब मुझे पूछना है, कहां पर मुझे जाना है? पहला कदम क्या मतलब आप कर रहे हैं? प्रभु आप योग्य हैं, आप मेरी अगुवाई करेंगे, आप मेरी सहायता करेंगे, और तब मैं आगे सही रीति से आगे बढ़ना पाऊं। इससे पहले कि आप किसी के बारे में मनुष्य, परमेश्वर के बारे में मनुष्य से बातें करें, यह अवश्य है कि पहले परमेश्वर से उस मनुष्य के बारे में बात करें। फिर से मैं दोहराना चाह रहा हूं, इससे पहले कि आप किसी मनुष्य से परमेश्वर के बारे में बात करें, अवश्य है कि आप पहले परमेश्वर से उस मनुष्य के बारे में बात करें। ये इस बात को दिखाता है, परमेश्वर मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप इसके हृदय को बदल सकते हैं, आप इसके जीवन को बदल सकते हैं, आप इसके जीवन में सुसमाचार का कार्य कर सकते हैं, आप इस बहन से व्यवहार करते हैं, आप इससे व्यवहार करते हैं, प्रभु आप कर सकते हैं, इसलिए आपके पास मैं आया हूं। मेरा पहला कदम परमेश्वर के पास होना है, तब दूसरा कदम संसार में होना है। कहता है वो ठोकर खाने से तुम्हारे अक्षर, और अपनी महिमा की उपस्थिति में वो क्या कर रहा है मुझे और आपको क्या कर रहा है? अपनी महिमा की उपस्थिति के लिए तैयार कर रहा है। वो कितना सुंदर वो स्थान होगा। वो यहां कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, पास्ट चला गया, वर्तमान में हम चल रहे हैं, फ्यूचर में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में चलते हुए हम भविष्य में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और परमेश्वर वर्तमान में मुझे तैयार करते हुए, उसने तैयार किया है, तैयार कर रहा है, तैयार करता जाएगा, और वर्तमान में ही हम उसकी महिमा के संभागी हो गए हैं, और उस महिमा को जो संपूर्णता में है अंत अंत में हम देखने पाएंगे। लेकिन वो कह रहा है, और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और अनंत करके खड़ा करता है। केवल उस समय नहीं होगा जब मैं मर जाऊंगा, तब उसके बाद होगा, नहीं नहीं नहीं, इस काल में, समय में भी जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं, परमेश्वर के पास आता हूं, इस बात को समझता हूं परमेश्वर इसी योग्य है, और तब वो मेरे की सहायता करता है, और वही समय आता है कि मैं परमेश्वर की महिमा के उपस्थिति में होकर अपने जीवन में आगे बढ़ता हूं। क्योंकि मैंने किसको थामा है? मैंने परमेश्वर को थामा है, मैं परमेश्वर को बाप कर सकता है। और तब आगे चल के कहता है, और उस अद्वैत परमेश्वर, यहां पर पूरी रीति से परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या कर, कैसा है, और परमेश्वर क्या करता है, इन 2 पदों में परमेश्वर के कार्यों की व्याख्या है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या कर सकता है, इन सारे परमेश्वर के जो गुण और उसके महान कार्य, उसका अधिकार इन 2 पदों में छिपा हुआ है। और ऐसे अद्वैत परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है, इसीलिए आरंभ करता है उस विश्वास को थामे रहो, उद्धार को थामे रहो, क्योंकि ये परमेश्वर, इस परमेश्वर तुमने विश्वास किया है, इस परमेश्वर के द्वारा तुमने उद्धार पाया है वो परमेश्वर, ये परमेश्वर है, तुम्हें उद्धार दिया है, तुम्हें अपना बनाया है, तुम्हें बुलाया है, तुम्हें अलग किया है, ये संघर्ष में तुम जाओगे लेकिन तुम परमेश्वर पर निर्भर हो, इससे तुम बचो और वो परमेश्वर तुम्हें करके अनंत में भी ले जाएगा। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर। और इसलिए ये यहूदा की पत्री जो 25 पद है वो पूरी परमेश्वर के बारे में बताए। वो कहना चाहता है विश्वासियों तुम व्याकुल ना हो, परेशान ना हो, झूठे शिक्षक आएंगे, परेशानी आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने उद्धार का कार्य किया है, तुम्हें छुटकारा दिया है और वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो मैं तुम्हें अंत तक तुम्हारे साथ रह के तुम्हें संभालेगा और अपनी महिमा में खड़ा होगा। परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर के, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो मनुष्य नहीं झूठ बोले और अपनी बात कहकर मुकर जाए। गिनती उसके 23:19 में के लिखा हुआ है, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और अपनी बात कहकर बदल जाए। पहला शमूएल 15:29 में लिखा है, वो अपना मन नहीं बदलता। दूसरा क्रंथियों उसका पहला अध्याय 20 में लिखा है, उसकी प्रतिज्ञाएं जितनी हैं वो सदा हां और आमीन के साथ हैं। मेरे प्रियो, वो योग्य है, वो योग्य है, वो योग्य है। दानिय्येल की साक्षी हम देखते हैं परमेश्वर योग्य है, पौलुस की साक्षी परमेश्वर योग्य है। और तब वो कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से अब भी हो और युगन बनी रहे, आमीन। मेरे प्रियो, ये यहूदा की पत्री मुझे और आपको ना केवल चिताने के लिए है, ना केवल सावधान करने के लिए, लेकिन मुझे और आपको इनकरेज करने के लिए है, प्रोत्साहित करने के लिए है, प्रोत्साहित करने। उद्धार सेल्वेशन कीमती है, कीमती है, और वो परमेश्वर का कार्य है।